प्रथम बिंदु अरब और महात्मा मोहम्मद। एशिया खंड के दक्षिण पश्चिमांचल में फारस की खाड़ी, भारतीय समुद्र, रक्त सागर, हलब और फुरात आदि नदियों से घिरा अरब देश है। 6000 मील लंबे, 2240 मील चौड़े बालुकामय इस पहाड़ी देश की तुलना कुछ कुछ हमारे यहाँ के मारवाड़ और बीकानेर से हो सकती है। बहुत दिनों से अरब निवासी बद्दू बकरी ऊँट चराते एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिरते हैं। शाम की भाषा में मरुभूमि को अरबत कहते हैं, इसी से अरब शब्द निकला है। यहाँ का उच्चतम पर्वत सिरात यमन प्रदेश से शाम तक फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 5,333 हाथ ऊंची है। बीच बीच में कहीं कहीं, विशेषकर शाम प्रदेश में, खेती के उपयुक्त उर्वरा भूमि भी है। जहाँ तहाँ सोने चांदी की खाने भी पाई जाती हैं। प्राचीन अरब। अत्यंत प्राचीन काल में जदीस, आद, समूद आदि जातियाँ, जिनका अब नाम मात्र शेष है, अरब में निवास करती थीं। किंतु भारत सम्राट हर्षवर्धन के समसामयिक हजरत मोहम्मद के समय कहतान, इस्माइल और यहूदी वंश के लोग ही अरब में निवास करते थे। अरब की सभ्यता के विषय में जर्मन विद्वान नवेल्दकी लिखता है, ईसा से 1000 वर्ष पूर्व अरब के आग्नेय कोण की सभ्यता चरम सीमा को पहुंची हुई थी। गर्मियों में वर्षा के हो जाने से सबा और हमीर का यह यमन देश बड़ा हरा भरा रहता था। यहाँ की प्रशस्तियाँ और भव्य प्रासादों के ध्वंसावशेष आज भी हमें बलात् प्रशंसा के लिए प्रेरित करते हैं। समृद्ध अरब या यवनों और रोमकों इटली वालों का कहना यहाँ के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। सबा की गौरव सूचक अनेक कथाएं बाइबल ग्रंथ में पाई जाती हैं, जिनमें सबा की महारानी और सुलेमान की मुलाकात विशेष तौर स्मरणीय है। सबा वालों ने उत्तर में अरब के दमिश्क प्रांत से लेकर अबिसिनिया अफ्रीका में पर्यंत आरंभ ही में लेखन कला का प्रचार किया था। फॉरेस्टर महाशय ने अपने भूगोल में शाम के पड़ोसी प्राचीन नाबत राज्य के विषय में लिखा है, यूटिंग महाशय ही का यह प्रयत्न है कि प्राचीन ध्वंसावशिष्ट सामग्रियों द्वारा चिर लुप्त समूद जाति का परिचय हमको मिल सका। आरंभ में इसके द्वारा शिक्षित नाबत जाति भी इसके सदृश ही थी, जिसकी कीर्ति अरब की मरुभूमि का उल्लंघन कर हिजाज और नज्द तक फैली हुई थी। वाणिज्य व्यवसाय द्वारा धनार्जन में कुशल यह लोग इस्माइल वंश के अनुरूप युद्ध भय से भी निर्भय थे। इनके फिलिस्तीन तथा शाम पर आक्रमण और अरब समुद्र में अनेक बार मिस्र के जहाजों पर डाका डालने यूनान के राजाओं को भी इनकी शत्रुता के लिए प्रेरित किया था, किंतु रोम की सम्मिलित शक्ति के अतिरिक्त कोई भी इनको परास्त करने में समर्थ न हुआ। अस्राबू के समय अशक्त होकर इन्होंने रोम की संदिग्ध अधीनता स्वीकार की थी। पृष्ठ संख्या 10। थ्याचर महाशय आंग्ल विश्वकोश में लिखते हैं, ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व दक्षिण की ओर कोई उच्चतम सभ्यता थी, आज वहां नगर प्राकार का ध्वंस बाकी है, जिसका वर्णन बहुत से यात्रियों ने किया है। यमन और हजमौत में ऐसे ध्वंसावशेषों का बाहुल्य है, वहां कहीं कहीं प्रशस्तियां भी प्राप्त होती हैं। कदजानी ने नगर ध्वंसावशेष पुस्तक में सना के समीपवर्ती दुर्ग को सप्त आश्चर्यों में गिना है। प्राचीन सभा की राजधानी यारब नगरी के ध्वंस को अर्नो, हाल्वे और ग्लाजी महाशयों ने देखा है। वहाँ की अवशिष्ट बड़ी खाई के चिन्ह जीर्णोद्धार किए गए अदन के कुंडों का स्मरण दिलाते हैं। ग्लाजरी प्रकाशित दो दीर्घ प्रशस्तियों से इनका पुनरुद्धार ईसा के पंचम और षष्ठम शतक में किया गया प्रतीत होता है। यमन प्रांत के हरान नामक स्थान में 30 हाथ लंबी खाई मिली है। मोहम्मद कालीन अरब। प्राचीन काल में अरब निवासी सुसभ्य और शिल्प कला में प्रवीण थे, यह ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। परंतु नीचर गच्छत्युपरिच तथा चक्रनेमिक क्रमेण के अनुसार कालांतर में उनके वंशज घोर अविद्या अंधकार में निमग्न हो गए और सारी शिल्प कलाओं को भूलकर ऊंट बकरी चराना मात्र उनकी जीविका का उपाय रह गया। वह इसके लिए एक स्रोत से दूसरे स्रोत, एक स्थान से दूसरे स्थान में हरे चरागाहों को खोजते हुए खेमों में निवास करके कालक्षेप करने लगे। कन खजूरा, गोह, गिरगिट आदि सारे जीव उनके भक्ष थे। नरबलि, व्यभिचार, द्यूत और मद्यपान आदि का उनमें बड़ा प्रचार था। इस्लाम के पूर्व पिता की अनगिनत स्त्रियाँ दाय भाग के तौर पर पुत्रों में बांट दी जाती थी, जिन्हें वह अपनी स्त्री बना लेते थे। राजपुत्र अमुलकैस कवि के अपने और अपनी फुआ की कन्या संबंधी दुर्वृत्ति पूर्ण काव्य को भी बड़ी प्रसन्नता से लोगों से काबा के पवित्र मंदिर में स्थान दिया था। प्राचीन राज्यों के विध्वंस हो जाने पर परस्पर लड़ने भिड़ने वाले क्षुद्र परिवार सामंतों का स्थान स्थान पर अधिकार था। एक भी आदमी का हत होना उस समय उभय परिवार के लिए चिरकाल पर्यंत कलह का पर्याप्त बीज हो जाता था। उस देशाग्नि को माता के दूध के साथ लड़कों के हृदयों में प्रविष्ट करा दिया जाता था। युद्ध के कैदियों के साथ उनके स्त्री और बच्चों का भी शिरच्छेद उस समय की प्रथा में अति साधारण था। निद्रितों पर आक्रमण कर लूटने और मारने में कुशल लोग फातक और फताक शब्दों से अभिपूजित होते थे। प्रज्वलित अग्नि में जीवित मनुष्य को डाल देना उनके समीप कोई असाधु कर्म नहीं समझा जाता था। हिंदू पुत्र अमरु ने अपने भाई के मारे जाने पर एक के बदले 100 के मारने की प्रतिज्ञा की। उसने एक दिन अपने प्रतिपक्षी तमीम वंशियों पर धावा किया, किंतु लोग बस्ती छोड़कर भाग गए थे। केवल हमरा नाम की एक बुढ़िया वहां रह गई थी, जिसे उसने जलती आग में डलवा दिया। उसी समय अभाग्य का मारा अमारा नामक एक क्षुधातुर सवार दूर से धुआं उठते देख भोजन की आशा से उधर आ निकला। इन लुटेरों के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैं कई दिन का भूखा हूँ, कुछ मिलने की आशा से आया हूँ। इस पर अमरु ने अपने साथियों को आज्ञा दी कि इसको आग में डाल दो। कोमल शिशुओं को लक्ष्य बनाकर तीर मारना, असह्य पीड़ा देने के लिए एक एक अंग को थोड़ा थोड़ा करके काटना, शत्रु के मुर्दों की नाक कान काट डालना, यहाँ तक कि उनके कलेजे खा जाना। उहद के युद्ध में हिंद नामक स्त्री ने हमूजा मोहम्मद सहायक के कलेजे को काट कर खाया था, इत्यादि उस समय के अनेक क्रूर कर्म उनकी निशंसता के परिचायक थे। पृष्ठ संख्या 11। मोहम्मद जन्म। ऐसे अंधकार के समय अरब के प्रधान नगर मक्का में अब्दुल मतलब के पुत्र की भार्या आमना के गर्भ से स्वनाम धन्य महात्मा मोहम्मद 617 विक्रम संवत में उत्पन्न हुए। इनका वंश हासिन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। जब अभी यह गर्भ ही में थे कि इनके पिता स्वर्गवासी हुए। माता और पितामह का बालक पर असाधारण स्नेह था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले बद्दू लोगों की स्त्रियों को पालने के लिए अपने बच्चों को दे देना मक्का के नागरिकों की प्रथा थी। एक समय सात वंश की एक बद्दू स्त्री हलीमा मक्का में आई। उसको कोई और बच्चा नहीं मिला था, जिसे जब धनहीन आमना ने अपने पुत्र को सौंपने को कहा तो उसने यह समझकर स्वीकार कर लिया कि खाली हाथ जाने से जो ही कुछ पल्ले पड़ जाए वही अच्छा। हलीमा ने एक मास के शिशु मोहम्मद को लेकर अपने डेरे को प्रस्थान किया। इस प्रकार बालक मोहम्मद 4 वर्ष तक बद्दू गृह में पलता रहा। पीछे वह फिर अपनी स्नेहमयी माता की गोद में आया। एक समय सती आमना ने कुटुंबियों से भेंट करने के लिए बालक मोहम्मद के साथ अपने मायके मदीना को प्रस्थान किया। वहां से लौटने पर मार्ग में अवब्बा नामक स्थान पर पितृ छाया विहीन बालक मोहम्मद को अमृत तुल्य मात्र कर स्पर्श से भी वंचित कर देवी आमना ने स्वर्गारोहण किया। बहु और पुत्र के वियोग से खिन्न पितामह अब्दुल मतलब ने वात्सल्य पूर्ण हृदय से पौत्र के लालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया, किंतु भाग्य को यह भी स्वीकृत न था और मोहम्मद को 8 वर्ष का छोड़कर वह भी काल के गाल में चले गए। मरते समय उन्होंने अपने पुत्र अबू तालिब को बुलाकर करुण स्वर में आदेश दिया कि मातृ पितृ विहीन वत्स मोहम्मद को पुत्र समान जानना। महात्मा मोहम्मद ने अबू तालिब की प्रेमपूर्ण अभिभावकता में कभी वन में ऊंट बकरी चराते तथा कभी साथियों के साथ खेलते कूदते अपने लड़कपन को सानंद बिताया। जब वह 12 वर्ष के थे और उनके चाचा व्यापार के लिए बाहर जाने वाले थे, तब उन्होंने साथ चलने के लिए बहुत आग्रह किया। चाचा ने मार्ग के कष्ट का ख्याल कर इसे स्वीकार न किया। जब चाचा ऊंट लेकर घर से निकलने लगे तो भतीजे ने ऊंट की नकेल पकड़कर रोते हुए कहा, चाचा जी न मेरे पिता है न माँ, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जाते हो, मुझे भी साथ ले चलो। इस बात से अबू तालिब का चित्त इतना द्रवित हुआ कि वह अस्वीकार न कर सके और साथ ही मोहम्मद को भी लेकर शाम की ओर प्रस्थित हुए। इसी यात्रा में बालक ने खीष्ट तपोधन बहेरा का प्रथम दर्शन पाया। विवाह। जनप्रवाद है कि असाधारण प्रतिभाशाली महात्मा मोहम्मद आजीवन अक्षर ज्ञान से रहित रहे। व्यवहार चतुरता ईमानदारी आदि अनेक सद्गुणों के कारण कुरैश वंश की एक समृद्धशालिनी स्त्री खदीजा ने अपना गुमाश्ता बनाकर 25 वर्ष की अवस्था में नवयुवक मोहम्मद से शाम जाने के लिए कहा। उन्होंने इसे स्वीकार कर बड़ी योग्यता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इसके कुछ दिनों बाद खदीजा ने उनके साथ ब्याह करने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि खदीजा की अवस्था 40 वर्ष की थी, पृष्ठ संख्या 12, उसके दो पति पहले भी मर चुके थे, किंतु उसके अनेक सद्गुणों के कारण महात्मा मोहम्मद ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तत्कालीन मूर्तियां हुबल लाथ, मनात, उज्ज आदि भिन्न भिन्न अनेक देव प्रतिमाएं उस समय अरब के प्रत्येक कबीले में लोगों की इष्ट थीं। बहुत पुराने समय में वहां मूर्ति पूजा न थी। अमरू नामक काबा के एक प्रधान पुजारी ने शाम देश में सुना कि इनकी आराधना से दुष्काल से रक्षा और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। उसी ने पहले पहल शाम से लाकर कुछ मूर्तियाँ काबा के मंदिर में स्थापित की। देखा देखी इसका प्रचार इतना बढ़ा कि सारा देश मूर्ति पूजा में निमग्न हो गया। अकेले काबा मंदिर में 360 देव मूर्तियां थी, जिनमें हुबल जो छत पर स्थापित था कुरेश वंशियों का इष्ट था। जय अलल हुबल, हुबल उनका जातीय घोष था। लोग मानते थे कि ये मूर्तियां ईश्वर को प्राप्त कराती हैं, इसलिए वे उन्हें पूजते थे। अरबी में इलाह शब्द देवता और उनकी मूर्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु अलाह और शब्द इस्लाम काल से पहले उस समय भी एक ही ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता था। श्रीमती खदीजा और उनके भाई नौफल मूर्ति पूजा विरोधी यहूदी धर्म के अनुयायी थे। उनके और अपनी यात्राओं में अनेक शिष्ट महात्माओं के सत्संग एवं लोगों के पाखंड ने उन्हें मूर्ति पूजा से विगत श्रद्ध बना दिया। वह ईसाई भिक्षुओं की भांति बहुधा हीरा की गुफा में एकांत सेवन और ईश्वर प्रणिधान के लिए जाया करते थे। इका बी इस्मी रब्बिक, पढ़ अपने प्रभु के नाम के साथ, यह प्रथम कुरान वाक्य पहले वहीं पर देवदूत जिब्राइल द्वारा महात्मा मोहम्मद के हृदय में उतारा गया। उस समय देवदूत के भयंकर शरीर को देखकर क्षण भर के लिए वह मूर्छित हो गए थे। जब उन्होंने इस वृत्तांत को श्रीमती खदीजा और नौफल को सुनाया तो उन्होंने कहा, अवश्य वह देवदूत था जो इस भगवत वाक्य को लेकर तुम्हारे पास आया था। इस समय महात्मा मोहम्मद की आयु 40 वर्ष की थी। यहीं से उनकी पैगंबरी भगवत दूतता का समय प्रारंभ होता है। इस्लाम का प्रचार और कष्ट। ईश्वर के दिव्य आदेश को प्राप्त कर उन्होंने मक्का के दाम्भिक और समागत यात्रियों को कुरान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। मेला के खास दिनों, इहराम के महीनों से दूर से आए हुए तीर्थयात्रियों के समूह को छल पाखंड युक्त लोकाचार और अनेक देवताओं की उपासना का खंडन करके वह एक ईश्वर अल्लाह की उपासना और शुद्ध तथा सरल धर्म के अनुष्ठान का उपदेश करते थे। कुरैशी लोग अपने इष्ट आचार और आमदनी की इस प्रकार निंदा, उस पर इस प्रकार का कुठाराघात देखकर भी हाशिम परिवार की चिर शत्रुता के भय से उन्हें मारने की हिम्मत न कर सकते थे। किंतु इस नवीन धर्म अनुयायी दास दासियों को तप्त बालू पर लिटाते, कोड़े मारते तथा बहुत कष्ट देते थे, तो भी धर्म के मतवाले प्राणपण से अपने धर्म को न छोड़ने के लिए तैयार थे। इस अमानुषिक असह्य अत्याचार को दिन पर दिन बढ़ते देखकर अंत में महात्मा ने अनुयायियों को अफ्रीका खंड के हब्स नामक राज्य में, जहाँ का राजा बड़ा न्यायपरायण था, चले जाने की अनुमति दे दी। जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाती थी, कुरैशी का द्वेष भी वैसे वैसे बढ़ता जाता था, किंतु अबू तालिब के जीवन पर्यंत खुलकर उपद्रव करने की उनकी हिम्मत न होती थी। पृष्ठ संख्या 13। जब अबू तालिब का देहांत हो गया तो उन्होंने खुले तौर पर विरोध करने पर कमर बांधी। मदीना प्रवास। अब महात्मा मोहम्मद की अवस्था 53 वर्ष की थी। उनकी स्त्री श्रीमती खदीजा का भी देहांत हो चुका था। एक दिन कुरैशियों ने हत्या के अभिप्राय से उनके घर को चारों ओर से घेर लिया, किंतु महात्मा को इसका पता पहले से ही मिल चुका था। उन्होंने पूर्वी वहां से यस्रिब मदीना नगर को प्रस्थान कर दिया। वहां के शिष्य वर्ग ने अति श्रद्धा से गुरु शुश्रूषा करने की प्रार्थना की थी। पहुंचने पर उन्होंने महात्मा के भोजन, वासगृह आदि का प्रबंध कर दिया। जब से उनका निवास यास्रिब में हुआ, तब से नगर का नाम मदीतुन नबी या नबी का नगर प्रख्यात हुआ। उसी को छोटा करके आजकल केवल मदीना कहते हैं। कुरान में 30 खंड हैं और वह 114 सूरतों अध्यायों में भी विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में अनेक रकुओं और प्रत्येक रकुओं में अनेक आयतें होती हैं। निवास क्रम से प्रत्येक सूरत मक्की या मदनी नाम से पुकारी जाती है, अर्थात मक्का में उतरी सूरतें मक्की और मदीना में उतरी मदनी कही जाती हैं। मृत्यु। मदीना में अभी वह अधिक दिन तक शांतिपूर्वक विश्राम न कर सके थे कि वहाँ भी कुरैश उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे। अंत में आत्मरक्षा का कोई अन्य उपाय न देख कुरैश और उनकी कुमंत्रणा में पड़े हुए मदीना निवासी यहूदियों के साथ उन्हें अनेक युद्ध करने पड़े, जिनकी समाप्ति मक्का विजय और काबा को मूर्ति रहित करने के साथ हुई। जन्म नगरी के विजय करने पर भी मदीना निवासियों के स्नेह पाश में बद्ध हो महात्मा ने अपने शेष जीवन को मदीना में ही व्यतीत किया। उनके जीवन में ही सारा अरब एक राष्ट्र और एक धर्म के सूत्र में आबद्ध हो इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हो गया। 63 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार महात्मा मोहम्मद अपने महान जीवनोद्देश्य को पूर्ण कर शिष्य जनों को अपने वियोग से दुख सागर में मग्न करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। कुरान के भाव समझने में पद पद पर उस समय की परिस्थिति और घटना अपेक्षित है। उसे स्पष्ट करने के लिए तत्कालीन और प्राचीन अरब की दशा के साथ महात्मा की संक्षिप्त जीवनी भी आवश्यक है, जैसा कि अगले पृष्ठों से पता लगेगा। इसलिए यहाँ इसके विषय में कुछ करना पड़ा। 40वें वर्ष में इका भी इसमी रब्बिक से लेकर मरने के 17 दिन, किसी किसी के मत से 12 दिन पूर्व रब्बिकल अकम प्रभु तू अति महान है 10 वाक्य के उतरने तक जो कुछ दिव्योपदेश महात्मा मोहम्मद द्वारा प्रचारित हुआ उसी का संग्रह कुरान के नाम से प्रसिद्ध मुसलमानी धर्म का स्वतः प्रमाण ग्रंथ है।